नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कृषि खाद्य प्रणालियों में काम कर रही महिलाओं के नेतृत्व को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया है। प्रदेश में आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए आज लॉटरी निकाली गई। पहले चरण के स्कूल आवंटन 17 मार्च को होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल असम के गुवाहाटी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे और राज्य में मार्च के महीने में ही पारा सामान्य से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंचा। अधिकांश स्थानों पर दिन का तापमान 35 से 40 डिग्री के बीच बना हुआ है। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कृषि खाद्य प्रणालियों में काम कर रही महिलाओं के नेतृत्व को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया है। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में कृषि खाद्य प्रणाली 2026 में महिलाओं की भूमिका पर वैश्विक सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने महिला नेतृत्व वाली विकास रणनीति अपनाई है। राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि क्षेत्र में सभी स्तरों पर महिलाओं की अधिक भागीदारी से कृषि विकास को बढ़ावा मिलेगा।
फसल को बोने, काटने, प्रसंस्करण करने और हाट बाजार में ले जाने जैसे सभी गतिविधियों में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मछली पालन, मधुमक्खी पालन, पशु पालन, वन्य उपजों के समुचित उपयोग तथा कृषि पर आधारित उद्यमों को चलाने जैसे अनेक क्षेत्रों में हमारी माताएं, बहनें और बेटियां अथक परिश्रम करती है। वे कृषि अर्थव्यवस्था को अमूल्य योगदान देते हैं।
3 दिन का ये सम्मेलन गहन तकनीकी सत्रों की एक श्रृंखला पर आधारित है। इसमें कई विशेष मंच भी आयोजित किए जाएंगे जिनमें महिला किसान मंच और युवा मंच शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि उन्होंने हमेशा सदन की कार्यवाही निष्पक्षता, अनुशासन, संतुलन और नियमों के अनुसार संचालित करने का प्रयास किया है। विपक्ष द्वारा उनके निष्कासन की मांग वाले प्रस्ताव पर बयान देते हुए श्री बिरला ने कहा कि उन्होंने सभी के साथ सहयोग और सद्भाव बनाए रखते हुए व्यवस्था और दक्षता कायम रखकर अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने हमेशा सदन की गरिमा, मर्यादा और प्रतिष्ठा को लगातार बनाए रखने और सभी सदस्यों को पर्याप्त अवसर देने का प्रयास किया है।
मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि सदन की गरिमा, मर्यादा और प्रतिष्ठा में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे। हमारे संविधान द्वारा स्थापित संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था में मेरा हमेशा अटूट विश्वास रहा है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के वास्ते लगातार काम कर रही है। वे आज भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई राजस्थान के वार्षिक सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य के साथ प्रदेश के समग्र विकास का रोडमैप तैयार किया जा रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान में निवेश करने वाले उद्यमियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने युवाओं से स्टार्टअप और स्वरोजगार के माध्यम से अन्य लोगों को रोजगार देने वाला बनने की अपील की।
आपने देखा है 1,25,000 हमने नियुक्ति पत्र दे दिए, 1,35,000 हमारे प्रक्रियाधीन चल रहे हैं और 1,25,000 का हमने कैलेंडर निकाल दिया। लेकिन विशेषकर मैं मेरे युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, आप अगर राजस्थान में नौकरी लेना चाहते हैं अच्छी बात है, लेकिन मेरे को जो लगता है कि राजस्थान में नौकरी लेने वाले नहीं, आप नौकरी देने वाले बनिए जिससे हमारे राजस्थान का विकसित राजस्थान बन सके, हमारा उत्कृष्ट राजस्थान बन सके, ज्यादा से ज्यादा हम जॉब दे सके, इस ओर हमें चलना है।
कार्यक्रम में श्री शर्मा ने युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के नियुक्ति पत्र तथा महिलाओं को उद्यमिता के लिए वाउचर पत्र भी सौंपे। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने आज ही मुख्यमंत्री कार्यालय में केंद्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को योजनाओं की तुरंत और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिये। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज पाली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा का अधिकार आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए राज्य स्तरीय लॉटरी निकाली। इसके जरिए प्रदेश भर के निजी स्कूलों में 25% निःशुल्क सीटों पर विद्यार्थियों का चयन किया गया है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर बच्चे तक समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। श्री दिलावर ने कहा कि लॉटरी प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रखी गई है। चयनित विद्यार्थियों की सूची संबंधित पोर्टल पर देखी जा सकती है। गौरतलब है कि इस बार 6,25,000 से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। प्राप्त आवेदनों के आधार पर लॉटरी के माध्यम से विद्यार्थियों की प्राथमिकता का क्रम तय किया गया है। अभिभावक 16 मार्च तक विद्यालय चयन क्रम में परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद 17 मार्च को पहले चरण का विद्यालय आवंटन किया जाएगा, वहीं 7 अप्रैल को दूसरे चरण के आवंटन होंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल असम के गुवाहाटी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे। यह किस्त देश भर के 9 करोड़ 32 लाख लाभार्थी किसानों के खातों में हस्तांतरित की जाएगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इस दौरान 18,640 करोड़ रूपये प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि योजना के तहत अब तक किसानों को 4,09,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है। उन्होंने किसानों के लिए शुरू किए गए एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत विस्तार का जिक्र करते हुए कहा कि इससे किसानों को उनकी अपनी भाषाओं में फोन कॉल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी।
किसान कल्याण के लिए हम लोगों ने संपूर्ण जानकारी के साथ एक ही एआई डिजिटल प्लेटफॉर्म बन जाए भारत विस्तार, और इसलिए उसके प्रथम चरण को भी लॉन्च किया है, जिसमें किसान को सारी जानकारी एक फोन कॉल पर भी उसकी भाषा में देने का काम किया जाएगा।
प्रदेश में रसोई गैस की कमी के संबंध में आशंकाएं और अफवाहें दूर करने के लिए सभी जिलों में प्रशासन की ओर से गैस आपूर्ति व्यवस्थाओं पर निगरानी रखी जा रही है। जिला कलेक्टर गैस टर्मिनलों पर जाकर व्यवस्थाओं और सुरक्षा प्रबंधों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही जिलों में एलपीजी आपूर्ति की लगातार निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। पाली जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि जिले में घरेलू गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है।
साइट से संबंधित लोगों में या भय का वातावरण होने के कारण या भय महसूस करने के कारण थोड़ा बुकिंग में जल्दी की जा रही है, तो उसके कारण साइट पर कुछ इश्यू है, उनका भी एक दो दिन का समाधान हो जाएगा। मैं राज्य सरकार की ओर से आप सबको यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि प्रदेश में या पाली जिले में घरेलू गैस को लेकर के किसी प्रकार की कोई आपूर्ति संबंधित संकट नहीं है, और आगे भी इसकी पूरी व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार ने पूरी तरह से सबको आश्वस्त रहने के लिए आग्रह किया।
इससे पहले कल मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने घरेलू गैस सिलेंडर आपूर्ति प्रक्रिया की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए राज्य और जिला स्तर पर निगरानी समितियां बनाने के निर्देश दिए थे। सभी जिला अधिकारियों को पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 112 पर एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध भंडारण के संबंध में आई शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है। वहीं हेल्पलाइन नंबर 181 और 1443-5 पर भी इस संबंध में शिकायत दर्ज की जा सकती है। इस बीच इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आश्वासन दिया है कि देश भर में ईंधन की निर्बाध आपूर्ति बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में कंपनी ने कहा कि देश भर में उसके पेट्रोल पंप पूरी तरह चालू हैं और पेट्रोल, डीजल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। कंपनी ने ग्राहकों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और पेट्रोल पंपों पर अनावश्यक भीड़ नहीं लगाने की अपील की है। प्रदेश में मार्च के महीने में ही तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अधिकांश स्थानों पर दिन का तापमान 35 से 40 डिग्री के बीच बना हुआ है। कई स्थानों पर गर्म हवाएं भी चल रही हैं। पिछले 24 घंटों में 40.8 डिग्री के साथ बाड़मेर सबसे अधिक गर्म स्थान रहा। गर्मी से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। दिन के समय बाजारों में रौनक कम रहने लगी है। है। लोग तीखी धूप से बचने के उपाय कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक मौसम शुष्क रहने और तापमान में मामूली गिरावट की संभावना व्यक्त की है। 14 और 15 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कहीं कहीं हल्की बरसात हो सकती है। इस बीच विभाग ने लोगों के लिए गर्मी से बचाव का परामर्श जारी किया है। पेय पदार्थों का अधिक सेवन करने के लिए कहा गया है। साथ ही किसानों को खेतों में सुबह शाम सिंचाई करने और मवेशियों के लिए विशेष व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। दांडी यात्रा दिवस के अवसर पर आज दांडी मार्च में भाग लेने वाले सत्याग्रहियों को नमन किया गया। आज ही के दिन महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में साबरमती से दांडी तक पैदल यात्रा कर नमक कानून को तोड़ा था। दांडी यात्रा से बापू ने संदेश दिया कि संकल्प की शक्ति सबसे बड़ी होती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में दांडी मार्च में भाग लेने वाले सभी वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रदेश में दांडी यात्रा दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोटा में केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से राजकीय महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को दांडी मार्च की पृष्ठभूमि और उसके प्रभाव की जानकारी दी गई। पाली में इस अवसर पर गांधी सर्कल से साइंस पार्क तक शांति मार्च पदयात्रा निकाली गई और संगोष्ठी आयोजित की गई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2026 टूर्नामेंट के पहले चरण का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये चरण 28 मार्च से 12 अप्रैल 2026 तक चलेगा। टूर्नामेंट के इस चरण में 10 स्थानों बेंगलुरु, मुंबई, गुवाहाटी, चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद और हैदराबाद में कुल 20 मैच खेले जाएंगे। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कृषि खाद्य प्रणालियों में काम कर रही महिलाओं के नेतृत्व को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया है। प्रदेश में आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए आज लॉटरी निकाली गई। पहले चरण के स्कूल आवंटन 17 मार्च को होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल असम के गुवाहाटी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे और राज्य में मार्च के महीने में ही पारा सामान्य से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंचा। अधिकांश स्थानों पर दिन का तापमान 35 से 40 डिग्री के बीच बना हुआ है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।